भूतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय अंगश्यामलिं शताभिरभि मन्दे कृतेन्दीवरं जटञ्जाबुदरोचि संविदधतं पट्टं नरस्य श्रिया वृन्दारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामा राधास्कन्दभुजं ध्यायेम दामि।
समटाइम्स कभी कभी कोनो कोनो समय बंगाली में मेरा फुलु ध्वनि दीते पारे कोनो आपत्ति नहीं। भक्ति देवी स्वयं पुरुषार्थ शिरोमणि ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमद् भागवत गीता आदि शास्त्रों के शास्त्रे प्रमाणित द्वारा भक्ति की स्वतंत्रता और भक्ति स्वप्रकाशिता दृढ़ रूपे ते स्थापन कर एखन प्रथम वृष्टि का उपसंहार कर रहे हैं। प्रथमे बोला हुआ छे किसी परम स्वतंत्र महापुरुष की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। महतों के हृदय में विराजमान भक्ति ही उस कृपा का हेतु है। यदि मध्यम अधिकारी भक्ति का कारण है तो भक्ति की स्वतंत्रता की हानि नहीं हुई, क्योंकि भक्तों के हृदय में जो भक्ति है उसी से उसको कृपा होती है और उसी से भक्ति उत्पन्न होती है। इसलिए भक्ति के द्वारा ही भक्ति होती है। भागवत में ऐसा कहा गया है स्मरंत स्मारयंतश्च मिथो अघौ घरम हरिम भक्त्या संजात्या भक्त्या विभुत उत्पूलकं तनु। नवजोगेंद्र के अन्नतम श्री प्रबुद्ध जोगिंद्र महाराज नेमी के निकट कह रहे हैं, हे राजन, एक प्रकार साधन भक्ति थी के आदिभूत प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं हरि को स्मरण कर और दूसरों को स्मरण कराकर जात प्रेम भक्त रोमांचित और पुलकित होते हैं। जात प्रेम जाते हृदय ते प्रेम उत्पन्न हुए छे। एक रकम भक्तगण परस्पर जे रकम सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी देखा होले अपनी केमन आछेन अन्य सब विषय कथा जिज्ञासा ना करे कृष्णेर कथा गोपीगणेर कथा परस्पर बोले और पुलकित होचेन रोमांचित होचेन अन्य केउ रोमांचित अंकुलित कर कर्म योग ज्ञान आदि साधन में साधन और साध्य भिन्न है। जैसे ज्ञान का साधन मुक्ति है, योग का वो भी ना तो परमात्मा में मिल जाना है, किंतु भक्त कर्म योग का जाग जग इत्यादि साधन है और स्वर्ग की प्राप्ति साध्य है। ज्ञानियों का सम दम तितिक्षा नीति ध्यासन आदि साधन है और ब्रह्म सायुज्य साध्य है। योगियों का जम नियम आसन प्राणायाम साधन है, परमात्मा सायुज्य उनका साध्य है। ये सब साधक साधक सिद्धि के निकट जितने ही अग्रसर होते हैं उनका साधन कम हो जाता है और अंत में साधन का बोझ मस्तक से हटा करके सिद्धि में रम जाते हैं, साधन अब नहीं रह जाते। इसलिए उनका साधन और सिद्धि दोनों पृथक पृथक है, किंतु भक्ति में नहीं। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये भक्ति के तीन स्टेज है, किंतु है भक्ति ही, केवल तारतम्य है भक्ति का। साधन भक्ति साधन हो रहा किंतु है भक्ति, भाव भक्ति प्रेमा भक्ति का आभास और प्रेम भक्ति तर्तन की अवस्था है। पूर्व भक्ति ही क्रमशः भक्ति का हेतु हुआ करती, पूर्व जो भक्ति से क्रमशः भक्ति हेतु हुआ करती है। इसलिए भक्त साधक प्रेम भक्ति की ओर जितना ही अग्रसर होता है उसका साधन और बढ़ता जाता है, समाप्त नहीं होता। यदि कोई एक आदमी भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लिया तो श्रवण कीर्तन बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, क्योंकि साधन की अवस्था में जिसका स्वादन तरल होता है भाव और प्रेमावस्था में उसका आस्वादन गाढ़ हो जाता है। अभी साधन इंद्रियों से होता है, कृति साध्य भावा ससाधन विदा नित्य सिद्धस्य प्राकट्य दिशा। वो भाव तो नित्य है, कहीं से लाना नहीं है, कपड़ा है इसको साफ कर दिया गया, इसलिए हमारे अंदर में है, किंतु साधन के द्वारा उसको प्रकट किया जाता है। किंतु सब साधनों को साधन नहीं कहा जाएगा। यदि भाव को प्रकट करने के लिए साधन भक्ति इंद्रियों के लिए की जाती है तब तो साधन भक्ति है, साध्य भावा, जिससे कि भाव भक्ति प्रकटित हो। अन्यथा भाव को उद्देश्य करके यदि साधन नहीं होगा वो साधन नहीं। नरोत्तम ठाकुर तिनि बोलचें पाकिले से प्रेम भक्ति अपक्के साधन रीति भक्ति लक्षण तत्त्वसा। जैसे एक ही आम कच्चा अवस्था से टॉप खट्टा होता है, आम कच्चा आम, अपरिपक्व अवस्था से सुस्वादु मिष्टी हो जाए। वही प्रकार प्रेम के बहुत से स्तर हैं। प्रेम क्रमशः परिपक्व होकर के स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव ये नाम धारण करता है। प्रेम विकास के विभिन्न स्तर प्रेम की परिणति है। प्रेम ही क्रमशः सांद्र या स्वादिष्ट होकर, सांद्र माने घनीभूत होकर के पूर्ववस्था का त्याग नहीं करता, बल्कि स्नेह मान प्रणय हुआ। जैसे प्रेम परिपक्व होकर के स्नेह हुआ किंतु प्रेम नष्ट हो गया ऐसा नहीं, प्रेम रहेगा। और सब में ऐसा नहीं देखा जाता। प्रेम का सर्वोच्च स्तर महाभाव, महाभाव की केवल ब्रज गोपियों में ही स्थिति है। महाभाव ब्रज की गोपियों के अतिरिक्त कहीं नहीं है, यहां तक कि रुक्मिणी सप्तभामा में भी नहीं देखा जाता। जिस भक्ति में कृष्ण को सुख देने की कामना को छोड़कर कोई कामना नहीं है वही उत्तमा भक्ति है। वह तीन प्रकार की होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। यहां एक और बात विचारणीय है, और एक जिनिस विचारणीय। सांख्य मत के अनुसार, सांख्य मतानुसारे उपादान कारण अपनी पूर्व अवस्था को त्याग करके कार्य रूप में बदलता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, उदाहरण के साथ समझो। जैसे दूध, उसमें क्या देते हैं, जाम उसमें दे देते हैं, कुछ दही या कुछ, तो अब दूध नहीं रह जाता, वो अब दही हो जाता है, दूध नहीं रहता। फिर दही को दूध नहीं बना सकते, दही में फिर दूध नहीं रहता। उसी प्रकार भाव भक्ति भी जब प्रेमा भक्ति के रूप में बदलती है तो क्या अपनी पूर्व अवस्था को प्रत्याग कर देती है। जैसे भाव भक्ति यदि वो प्रेमा भक्ति हुई परिपक्व होकर के, तो क्या भाव भक्ति समाप्त हो जाएगी? नहीं, उस समय भाव भक्ति भी रहेगी और उधर प्रेम भी होगी। यही वैशिष्ट्य है। रति जब स्नेह के रूप में परिणित होती है, क्या रति की पूर्वावस्था समाप्त हो जाती है? नहीं। उसी प्रकार के इस उत्तरशीला रूप गोस्वामी ने दिया है सिद्धांत। कहते हैं रति कृष्ण की लादनी शक्ति है। रति अथवा भाव क्या है? विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व क्या? रागात्मिक भक्तों के हृदय में जो श्री कृष्ण सेवा की परिपाटी है, वो जब भक्तों के अंदर में संक्रमित होती है, आती है, तब विशुद्ध सत्व उसको कहते हैं। तरति कृष्ण की लादनी शक्ति विशेष है। वह कृष्ण की अचिंत शक्ति से पूर्व अवस्था का त्याग किए बिना, पूर्व अवस्था भाव का भाव रहता ही है, इधर प्रेम भी हुआ, उधर स्नेह मान प्रणय होता चला जाता है, पूर्व अवस्था ही रहता है। श्रवण कीर्तन इत्यादि अंग जैसे साधन भक्ति में है, साधन भक्ति के समय में श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन सब कुछ रहता है। और यदि गोपी का भाव आ गया, गोलोक वैकुंठ में चला गया, तो श्रवण कीर्तन स्मरण रहेगा कि नहीं? वहां पर भी रहेगा। वैसे ही भाव भक्ति में प्रेम भक्ति भी रहती है। अतः भाव भक्ति पूर्व अवस्था का त्याग किए बिना ही प्रेम भक्ति में परिणत। ट्रांसलेशन।
The compiler of Srimad Durga Kadambini, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, taking evidence from especially the Srimad Bhagavatam and the Srimad Bhagavad Gita, is now proving that Bhakti is not only the topmost goal, but she is also supremely independent and self-manifested. Therefore, by hearing from the independent Mahapurush, the Uttam Bhagavad, then Bhakti appears in the heart. But also, by the association of the Madhyam Adhikari, then Bhakti comes. So is it a question of Bhakti not being independent? No. Because the Bhakti present in the heart of the devotee, that simply goes to the heart of the sadhak. Therefore, in 11th canto, Srimad Bhagavatam, in her conversations of the Navayogendras with Sinani Maharaj, then they said, Smaranto Smaryantischa. The devotees in association, they remember Krishna and they cause others to remember Krishna. Bhakti Samjatiya Bhakti. Therefore, Bhakti is the cause of Bhakti. So in Sadhu Sangha, then sometimes the devotees' voice choke, their hair stand on end, and tears pour from their eyes. But the idea of bhakti is not caused by anything else. Bhakti is only caused by bhakti. how Sri Rupa and Sanatana Goswami, when they would meet, they would not discuss any other topics, how are you, etc. But simply they would discuss Krishna Katha and especially Gopi Katha. They would forget who was day and night and all ecstatic symptoms would appear in their bodies. Therefore bhakti is not caused by anything. Bhakti is caused only by bhakti. Therefore her independence and self-illumination qualities remain. But in other types of sadhana, this is not seen. In the jnanis, they adopt the sadhana of meditation, but their goal is Brahma Sayuj, Mukti. The yogis adopt Yam, Niyam, Pranayam, Dhyan, Atihara, etc. And their goal, but their goal is Paramatma Sayuja, to mix with Paramatma. The karmis, the karma yogis adopt different limbs, angas of karma yoga, and their attainment is the heavenly planets, or swarga. Therefore, in Dhyan, Yoga, and Karma, it is seen that their practice and their goal is difference. For example, the Jnanis, after achieving Mukti, they leave aside Jnan Sadhana. The Yogis. Therefore, once they achieve their Sadhya, then they leave their Sadhya. As much as they approach their goal, that much they abandon their Sadhana. But this is not the case in bhakti, because the sadhana, the practice, and the goal are not different things. Therefore, that uttam bhakti is seen in three stages: sadhana bhakti, bhava bhakti, and prema bhakti. That bhava bhakti is a semblance or a fraction of that prema bhakti, but all three are still bhakti. It is simply a matter of one maturing into the next stage. Sadhana bhakti matures into bhava bhakti matures into prem. Therefore, even upon the achievement of perfection in bhakti, still the sadhana bhakti, shravan, kirtan, vishnu smaranam, padasevanam, achanam, vadinam, dasyam, sakyam, remains. It is simply a matter of the taste increasing. Therefore, Sri Rupa Goswami has said, what is sadhana? Kriti sadhyat pavatsa sadhya bhava nitisirasya bhavasya prakatam vidhi sadhyata. Sri Rupa Goswami has described what is sadhana bhakti. Sadhana bhakti is endeavor by these senses to achieve sadhya bhava, or the eternal mood present eternally in the heart of the jivatma. Therefore, an example is given, just like if something is dirty, if I clean it by a cloth, then what is inside manifests by cleaning. By sadhana bhakti, that sadhya, that goal, manifests. Therefore, everything is not sadhana bhakti. Only if sadhana bhakti is aimed towards the achievement of bhava, then it can be called sadhana bhakti, otherwise not. Therefore, that is called sadhya bhava, eternally present, eternally perfected mood within the heart. If our goal is not bhava, then it cannot be called sadhana. Sri Narottam Das Thakur gives the example of a green mango, which is very sour, but when it ripens, it becomes sweet. In the same way, as one previous stage of bhakti matures into the next stage, it is simply a question of maturity, or that taste thickening. When prem transforms into sneha, sneha transforms into man, man transforms into pranaya, etc., the previous stage is not lost, it simply matures and develops. If I achieve sneha, my prem is not lost. If I achieve prem, then bhava bhakti is not lost. The previous thing remains. Therefore, that essence, the topmost limit of prem is called Mahabhav. It is found only in the gopis. It is not even found in other parsas like Rukmini and Satyabhama. Therefore, they prove, what is this uttam bhakti? That desire to strive for Krishna's happiness is divided into three stages, Sarambhakti, Bhavbhakti, and Premabhakti. But all three are bhakti. Therefore, in the case of the Advaitavadis, headed by Sri Sankaracharya, some fault is seen in their process. The example is taken like milk. If I add some, then my name is Karan, like turmeric.
The opinion of Sankar, not Sankaracharya.
Oh, Shankar,
actually.
Shankar. Therefore, like Naimini Karan is given, that is like the souring agent of turmeric. That is put into milk.
What's it?
How?
Tamarind.
Tamarind. If tamarind is added to milk, then that milk transforms to yogurt. That process is irreversible. But bhakti is not like this. The Naimini Karan and the Udup. Therefore, what is Rati? Rati is the essence of Padini Shakti. Therefore, Sri Rupa Goswami has described Sudha Sattva Visheshatma Prema Suryansa Sangrubak. Therefore, what is Sudha Sattva? What is Visheshatma? You should understand, we should understand that Ragatmik, that pure devotion is always present in the hearts of the Ragatmik devotees who are situated in Goloka Vrindavan. When by that mercy, that Nityasiddha Bhav enters the heart of the devotee, that is called Sudha Sattva. Therefore, by the Achintya Shakti of the Supreme Lord, the previous stage of bhakti remains as it is transformed into or thickens into the next stage and the next stage. Therefore, in bhakti, Shravan, Kirtan, the ninefold process of bhakti is the sadhan. But even in Gopi Bhav, when he went to Gopi Vrindavan, then Shravan, Kirtan, Vishnu, Smaran, etc. remains. Therefore, the conclusion is bhakti is perfect because the sadhan and the sadhya remain, both remain.
Bhagavan, Sarvabhyapi, অহেতু কৃপালু ওইরকম তার স্বরূপ ভূতা মহাভক্তি মা শক্তি ভক্তি দেবী ও সর্বব্যাপক কোনো দেশে কোন জীব কোন সময়ে কোন অবস্থাতে ভগবানের ভজন করতে পারে ভক্তি করতে পারে আর ভক্তি দেবী সর্বত্র আছে ব্যাপ আর অহেতু কি কৃপা অতএব অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে চিন্ময় বৈকুণ্ঠে গোলোক ধামে সর্বত্রই ভক্তি ব্যাপ্ত ভগবানের মতন ভক্তি সর্ববশীকারত্ব সকলকে বশীভূত করতে পারে এমন কি ভাগবতে বলা হয়েছে মুক্তাপি লীলায়া বিগ্রহ কৃত্বা ভগবন্তম বন্ধ মুক্ত পুরুষ তারা শরীর ধারণ করে আর ভগবানকে ভজন করে প্রথমে বলা হইয়াছে ভক্তি বিনা সহায়তা কর্ম জ্ঞান যোগ তপস্যাদি কোন ফল দিতে পারে ভক্তি কৃপাতেই তাহাদের এই কর্ম জ্ঞান যোগ ফল দিতে পারে এই জন্য সমস্ত সাধন আর সমস্ত সাধ্যের অপেক্ষা ভক্তি পরম উৎকর্ষিতা স্বতন্ত্রতা স্বপ্রকাশক ইত্যাদি প্রতিপাদিত হল এখন গ্রন্থকার বলছেন ভক্তি সমস্ত গুণ কি সিন্ধু স্বরূপ অথা অদন্ত সমুদ্র মানে থোড়ি সি উসকি মহিমা বর্ণন কিয়া হচ্ছে এক বিন্দু জেসে মহাপ্রভু জি নে রূপ কে শিক্ষা কে আরম্ভ মে বতলাযা পারাবার সিন্ধু পারাবার শূন্য গভীর ভক্তি রস সিন্ধু তোমায় চখাইতে কহি তার এক বিন্দু, মহাপ্রভু বলছেন ওই রকম ভক্তি এক অসীম অনন্ত গভীর রসের সমুদ্র। আমি এক বিন্দু তাহার বর্ণন করছি তোমাকে রূপকে এই চখাইতে, ভক্তি কি মহিমা অনন্ত অদ্ভুত অসমর্থ। ভক্তি কি জব এসি অদ্ভুত মহিমা হ্যায় সমস্ত জীবো কে লিয়ে, সমস্ত জীব মাত্র ভক্তি লাভ করনাই জীবন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভক্তি কে কি যদি এসি মহিমা হ্যায় তো প্রাণী মাত্র কো জীব মাত্র কো সব কো ছোড় করকে অখিল চেষ্টা পরায়ণ, কৃষ্ণ ভজন কে লিয়ে সব কুছ চেষ্টা করনি চাহিয়ে, অখিল কৃষ্ণ কে লিয়ে অখিল ভোগ ত্যাগ, সব ভোগো কা ত্যাগ, সব বিষয় কো ছোড়ো। সংসার কা প্রতি হামারা কর্তব্য হ্যায়, বিবাহ কিয়া হ্যায়, বচ্চে হ্যায়, বুড়ে মাতা পিতা হ্যায়, ওদের প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে। তাহলে তুমি ভক্তির কিছুই বুঝলে না। যত মহাপুরুষগণকে দেখা যায় নাথ থেকে আরম্ভ করে সুখদেব গোস্বামী আমার মহাপ্রভু, সব ভক্তগণকে দেখা রূপ সনাতন থেকে আরম্ভ করে মহাপ্রভু, সব নিত্যানন্দ প্রভু, সব লোকে এইরকম দেখা যায়। এই যে জীবনে উদ্দেশ্য ভক্তি হওয়া চাই। কোন লোক শ্রবণ কীর্তন করে এই মহিমা সাধু সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে গৃহ সংসার করে, দুর্ভাগা দুর্ভাগা। শাস্ত্রে বলছে মহাদুর্ভাগা, যারা ভক্তি জীবনের উদ্দেশ্য নেয় যে ভক্তি করব, নিশ্চিতই শাস্ত্রের অনুশীলন তারা সাধু সঙ্গ করে না। হয়তো সাধুর সঙ্গে ছিল কিন্তু কোন কথা তারা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করেন। সাধু সঙ্গ হলেই হবে না, মানে থাকলেই হবে না। বলা হয় না যে মাথাতে একটি থাকে উকুন, পবিত্র সাধু কে শরীর শির মে হ্যায় সাধু সঙ্গ করতা, এলে সমঝো সাধু সঙ্গ কা ফল ক্যা হ্যায়। সাধু সঙ্গ কর করকে বৈরাগ্য যোগ হোগা, অসব তত্ত্ব জ্ঞান আপনে আপ হো জায়গা নিশ্চিত। আর যদি নেই হুয়া, সুনা নেই বাত হৃদয় নেই ভিতর গে, উনকি বিচার শক্তি নিপুণ নেই হ্যায়, তাদের বিচার শক্তি নিপুণ না, তাদের বিবেক শক্তির অভাব। ইহা তক কি তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, অবে থেকে কি গালাগালি করবে। চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন অর্থাৎ মনুষ্যাকার হইলে কি হয়, ভূতের কার্য। আরে আকার কি হবে, বস্তুত তারা পশু, আর পশুর মধ্যে গাধা, এমন সাধারণ। বলছেন এখানে কেবল গ্রন্থকারের মত নয়, শাস্ত্রে প্রমাণ দিয়ে তিনি বলছেন পুমান বিরজ্যে বিনা পশু না, পুমান বিরজ্যে দু জায়গাতে বলা হয়েছে। এটা একটা তা বলা হয়েছে না না না, তুমান বিরজ্যে বিনা পরীক্ষিত মহারাজ কে সুখদেব গোস্বামী বলছে নিবৃত্ত কহোত্তম শ্লোক গুণানুবাদ বিরজ্যে বিনা পশু না। আর গুরু প্রাপ্ত হয়ে শরীর প্রাপ্ত হয়ে নিদেহ মাধ্যম गुरु कर्ण धारम मयानुकुल्ले नभस्वते रितम पुमान दिरच्चे बिना ऐजने बुझबा जदि हरि भजन ठीक ठीक होच्छे ना ताले करह भूतर कार्य शरीर की हो रहे करह भूतर कार्य जैसे एखन आमी संसार करे जैसे की रकम छाड़बो मृत्यु आसले की रकम छाड़बे कह भक्त आंकड़ी अर्थात ऐसे सर्वगुण संपन्न भगवान का पशु घना पशु प्रकृति प्राणी छाड़ा आज के भजन कर बेना भाषा किं न जीवंती तरवा किं न जीवंती भाषा किं न ससंतुत न खादंती न मेहंती किं ग्रामे प्रसुवे अपरे सबीर बराह उष्ट्र खरई संतता पुरुषा पशु न जत कर्ण पथो जातो नाम गाद जात नाम गदा करे रोकर भवार्थे हे यज्ञ जगत है मनुष्य देह प्राप्त करे जरा सब रंगता कारण अखिल चेष्टा परायण हुए हरि भजन करे ना तहा जरे आयु व्यर्थ यदि कहो जो जीवित रहना परमायु की सार्थकता है कहते ना वृक्ष तो 5000 वर्ष पर्यंत जीवित थाके ताते की हो यदि जीवित रहना ही परमार्थ परमायु की सार्थकता है तो मनुष्य की अपेक्षा कोटि गुण श्रेष्ठ है वृक्ष। अभी हम लोग ब्रज में जाएंगे 5000 वर्ष से ऊपर के वृक्ष अभी हैं। इमली तला में इमली का पेड़ भी था 5000 से अधिक कदम्ब गाछ है वो कोकिल वन में है सर्वत्र देखा जाता है। कोई कहते हैं वृक्ष तो जीवित रहते हैं किंतु श्वास नहीं ग्रहण करते ताले यदि श्वास प्रश्वास ग्रहण ते ही आ छोड़ ले आयु सार्थकता तो लोहार की धौक निभाती होता तो श्वास निश्चय भागवत कथा कड़ा कथा किंतु हमारे सुनी न भागवत विचार करी ना विचार करी ले चित्ते पावित विचार करो मनुष्य हो क्योंकि मनुष्य की भांति अधिक आयु ग्रहण वायु ग्रहण करता और त्याग करने में समर्थ है धौकनी प्राण वायु ग्रहण करे त्याग करने में समर्थ है किंतु भोजन मैथुन स्त्री संग नहीं कर सकता ओ ग्राम्य पशु गाय भैंस बकरा बकरी कुत्ता सूकर गधा ऊंट एरा के भोजन करना छेले उत्पन्न है ना ताले जन श्रेष्ठ अतः सब प्रकारे यही सिद्ध है हरि भजने ते जीवन है सार्थक। शिला जो जीव गोस्वामी बोलते पशुओ अपरे अंश की व्याख्या में बोलते तमपि नराकारम पशु मत्वा अपरमिति हरि भजन से विमुख व्यक्ति को नराकृति पशु कहा गया। कोई कोई कह सकते हैं जो लोग अत्यंत उच्च शिक्षित अथवा देश के नेता हैं जगत के बहुत लोग जिनका गुणगान करते हैं वे हरि भजन से विमुख होते क्या उनका मनुष्य नहीं कहेंगे। इसके उत्तर में कह रहे हैं कानों में जिनके कानों में कभी भगवान का नाम प्रवेश नहीं किया वे वृथा कलहकारी कुत्ते पिष्ठा भोजी सुकर कंटक भोजी ऊंट और भार ढोने वाले स्वपाताड़ित गधे के समान हरि भजन चाहे वो देश के नेता हो बहुत गणमान्य हो राष्ट्रपति हो सब कुछ हो किंतु वे कैसे हैं वृथा कलाकारी कुत्ता की करें খেয়ে আবার বমি করে, আবার ফেরে ওইটাকে খায়, আর শুকর বিষ্ঠা খায়, আর উট কি করে ওই কাঁটা খেয়ে নিজেরই রক্ত পান করে, আর গাধা সবসময় স্ত্রী পত্তাড়ি দুর্লতি খেয়েও তার পিছনে পিছনে দৌড়ায়, তো ওরাও সবগুলি এই রকম। জি গোস্বামী এর টিকাতে বলছেন, যার তাৎপর্য হরি বিমুখ ঘোর বিষয়ে আসক্ত ব্যক্তি, যে হরি কথা অমৃত ছোড় করকে কুত্তো কি ভাতি বৃথা বিষয়কে ভোগমে নিরত, শুকর কি ভাতি হর নাম কো ছোড় কর সর্বদা বিষয় বিষ্ঠা রূপী। বিষয় ক্যা হ্যাঁ, এক তো বিষ হ্যাঁ, আর নই তো বিষয় বিষ্ঠা রূপ, ভোজন মে অভ্যস্ত হ্যাঁ। উট কি ভাতি ভক্তি রূপ আম্র পল্লবো কো ছোড় কর বিষয় কণ্টকো কো ভোগ করতে হ্যাঁ, গধে কি ভাতি স্ত্রী পদ তাড়ি সদৈব সংসার কে ভার বহন মে সুখী হ্যাঁ, ऐसे अपने समान व्यक्तियों के द्वारा जो प्रशंसित हैं पशुओं में श्रेष्ठ होने के कारण महापशु है, चाहे भले ही गणमान्य हो, देश के नेता हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो, इसलिए जिन लोगों में मानव धर्म का विकास है उन लोगों के लिए हरि भजन या भक्ति पथ का अवलंबन करना अपरिहार्य है, यही प्रपन्न हुआ है। इति ভক্তি কা সর্বোৎকর্ষ নামক প্রথম বৃষ্টি কি পীয়ূষ বর্তি।
Therefore, all jeans, at any time, at any condition, any place, or any circumstance, have the eligibility to perform bhakti. Bhakti is all-pervading throughout the Vaikuntha planets, and her nature is she can control anyone. Therefore, she is all-attractive. Even Sankaracharya has said that she attracts the perfected souls. Mukti api vilanam vigranam bhagavan vajantam. Even after the attainment of liberation, the liberated souls accept the vigraham, a body, and vilanam, they enter into the lila of bhagavan and perform bhajan, perform seva there. Therefore, without bhakti, the other paths like kara and gyan can never give any results. Therefore, bhakti is the topmost. She is self-illuminating and she is independent. Bhakti is the ocean of all good qualities and the essence of all goals of life. Therefore, in different places, the Shastras have tried to glorify Bhakti. Sri Mahaprabhu described to Sri Sanatana Goswami, Bhakti is like an unfathomable, unlimited ocean, but Rupa, Sirupa, I'm trying to give you Sisananda Goswami, I'm trying to give you one drop. Therefore, Bhakti is adbhut, astonishing, asamodam. She is unequal to anything. She alone is the supreme goal of all jivas, of all souls. Therefore, we should have that determination to leave everything for her. Akila chasta parayan, for Krishna's happiness, we should make all endeavors. Akila Bhaktiyar, and for his happiness we should abandon our own material enjoyment. Therefore, if one is thinking, but how I can perform bhajan, I have to serve my mother and father, my children are very small, etc., then you have not understood anything of the glories of bhakti. Just see the lives of the great souls like Sri Nityananda Prabhu, Sri Mahaprabhu, Sri Rupa, Sri Sanatan, Sri Ramanujacharya, etc. How they left everything to achieve the goal of bhakti. Therefore, that person who leaves sadhu sangha, but still they make a show of performing shravana and kirtan, that person is definitely the most unfortunate of all. That person is sitting in Harikatha and Satsanga, but taking great care the instructions of the sadhu will not enter their heart. That person is like an animal, like a head louse. A head louse is always with the sadhu, but no benefit, only disturbing. Therefore, in sadhu sangha, it must produce the result of renunciation and knowledge. These two must come automatically. Therefore, if we leave sadhu sangha, that means even a semblance of vivek, discrimination, intelligence has not come to us. What to speak of? Complete discrimination. Therefore, Bhagavatam, Sri Vishnu Chakravarti Thakur is collecting evidence from many scriptures, saying one who achieves the human form of life but does not perform bhajan of Sri Krishna, that person is like a ghost or like a donkey. And even more so, that person who receives a bona fide guru but leaves him, that person is a killer of their own soul. That person is like a stool or urine drinking animal. Therefore, all endeavors that do not lead us to the achievement of bhakti are useless. Therefore, all good qualities are achieved by a devotee. And if someone has all good qualities without devotion, then they are like ornaments on a dead body. Shri Sukadeva Goswami said to Parikshit Maharaj, a tree appears superior because he lives for thousands of years. In Vrindavan, there are some trees we see which are 5,000 years, some trees which are there from Satyuga. Those trees live for millions of years. Therefore, they may appear superior to human beings. Then someone may say, no, they are not superior because they do not take any breath. Then, if that is the case, then the bellows of a blacksmith is superior to a tree. But one may say, but the bellows of a blacksmith give no as good as a chance for Sri Sangha associating with women. They cannot have sex and children and everything. Therefore, animals are superior to the bellows of a blacksmith because they can pass semen and all these other things. Therefore, the conclusion is that person who has a human form of life but does not perform bhajan, that person is like a human-shaped animal, a two-legged animal, but without horn and tail. Therefore, in this world, Bhagavatam says, people worship, ordinary persons worship materialistic persons who have achieved some fame and name and position in society. But those humans are not humans at all. They are worse than a camel, a pig, a dog, or a donkey. For example, we see many big district magistrates, many prime ministers, presidents, temple presidents. They are not doing bhajan, therefore they are like a camel. A camel chews the thorn, and the thorn cuts his tongue, and he drinks his own blood, and he thinks he's very happy. Or the pig, he chews the stool and drinks such nectar. The dog eats, then vomits, then eats the same thing. And the donkey, he runs behind the wife, and she kicks him in the face. Therefore, those persons who leave Harikatha and the nectar of Harinam, such persons are just like that, because they are eating nectar and drinking poison. Therefore, they are like crows that leave the mango tree and go to the garbage dump or the neem tree. Therefore, in society, they may have achieved a big position, but if they are not performing Hari Bhajan, they are like camels, donkeys, dogs, or pigs.
Kono, Vyakti. কীর্তন করে আর কীর্তন করবার যখনই সমাপ্ত হলো তখন আমার পাল্লা শেষ হয়ে গেল, তখন সভাগৃহ থেকে বাহিরে যে বিষয়ের কথা আবুল তাবুল বলে, তাহলে ভক্তি দেবী কিরকম প্রকাশ হবে? পাল্লা ওই পর্যন্ত শেষ করো না, ওই কীর্তনের অপেক্ষা ওই শ্রবণ করা বেশি মাহাত্ম্য, এটা বুঝব। আর উপেক্ষা করলেই বাস ভক্তি দেবী অন্তর্হিত হয়ে যাবে। আর একবার আই থট দ্যাট ঘোষ আর ওনলি ইন ইন্ডিয়া, But now I see that ghosts are also in Western country. So don't fear, they may be. If anyone is hearing Harikatha, worshipping Thakurji, reading our bhakti books, if ghosts are, they may be thousand and thousand, but they cannot touch you. You should have a strong faith of this. Never, they cannot touch you. But if you will not do bhajan, and you will be apavitra,
impure,
then they may
touch you.
So always chant Krishna, do archan, or always remembering Krishna, katha, then they will not come. Or, you have gone today to Paitha. Paitha gram?
Uhulavan, Paitha, Chandrasagar.
Paitha mein kon kon bola? Kya bole se? Tumi? Aar? Angreji kya bole se?
Nevi Maharaj. And Muni Maharaj.
Angreji?
Nevi Maharaj. Nevi Maharaj.
Ye bole hai?
Nahi. Aadi koi bana, dekhi koi bana.
Oh, you should speak the glorification of Paitha gram. What is the glory? Kar ki hai che? Hamare to 5 minute aag nahi de. Guru je rakam hai.
Om Jnanasinam Yasya Jnanapivarasalakaya Chakshur Vimilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Guru Chandraya Radhikaya Itadaya.
Not so many slokas.
Krishnaya Krishna Bhaktaya Kata Bhaktaya Guru Namaha. So Shri Gurudev has ordered me to speak briefly about the glories of Paitha Gram, where our political party went before coming here to Giriraj Govardhan. So, this area nearby to here, this area nearby to here is the area of Krishna's Vasanti Ras Lila. And nearby to this area also is the place of Chandra Sarovara, or also the village of Parasoli, where at that time when Sri Krishna performed Ras Lila in the presence of millions of gopis, the Chandra, the moon, came in the sky there in a very beautiful way, shining down its moon beams, and the moon became stunned in the sky from observing this ecstatic display of Sri Radha and Krishna's and all the Brajagopis' most beautiful Maharas Lila. And for a whole night of Lord Brahma, which is billions of years, this period of time was the extent of the Ras Lila. Although it was like one night within this world, but by the inconceivable potency of Krishna, they were able to enjoy this ras for millions of years. So during that time, actually this is described in Sri Jayadeva Goswami's Gita Govinda, how Srimati Radhika, she entered into a condition of man. That means that she became sulky mood, and she left the ras. So when she left this ras mandala, even though there were millions of very beautiful qualified gopis, at that time she left Krishna, experienced immediately that the ecstasy, that the tasting of ras had reduced so much. So, even in the presence of all the gopis, Sri Krishna himself also left there. He abandoned this Rasa-lila. This is the evidence given in Chaitanya Charitamrita, in the conversation of Roy Ramananda Samvad, that what is the superior position of Srimati Radharani? That even in the presence of millions of very qualified gopis, without Srimati Radhika, there can be no actual Ras. So Sri Krishna left the Ras and went searching here and there in the forest. Where is Radhe? Please, Rako Pran, please save my life. So, in this way, as he was searching in the forest, and after he left, then the Brajagopis, they also left, and they were also going through the forest area, just nearby, in this area called Parasoli. And when they came near to where Krishna was hiding within the forest, and he himself was searching for Srimati Radhika, then at that time, the gopis, they were asking the forest animals and all the creepers, have you seen Krishna? Have you seen Krishna? And as they came near to Krishna, at that time, Krishna himself manifested four arms. Like in a joking mood, he was disguising himself like Lord Narayan. When the gopis came there, they actually saw Krishna in this four-armed form. But how did they respond? They simply said, they folded their palms, oh Lord Narayan, have you seen our Krishna? Have you seen our Krishna? And they were not concerned to stay there. They simply walked by. But shortly thereafter, Srimati Radhika, who was also walking through the forest area, she came by to that place. And at that time, when Krishna was experienced even the fragrance coming from the veil of Srimati Radhika, at that time, he was no longer able to properly maintain his extra two arms. And as she came close within the range of his vision, then his two arms disappeared, his out of the four arms, and only he had his two arms in his beautiful Shyam Sundar form. That is the meaning of the word paita, which means that the arms will go inside. So, in this way, it is clear that Sri Krishna is overpowered by the mood of praying of Srimati Radhika. He cannot remain in this disguised form, because Krishna's nature is that he reciprocates with his devotee. Whatever is their mood, then he reciprocates with that mood. And no one has the mood like Srimati Radhika, none of the Brajagopis, and all of them even combined together, cannot equal the mood of the highest level of Mahabhav praying and the separation mood that Srimati Radhika is feeling for Krishna. This is all very vividly described in Gita Govinda, which our Srila Gurudev has given to the whole world to try to understand these very intimate moods of the feelings of separation between Radha and Krishna and the ecstasy which they obtain in their meeting. So that very place is the place where all of our acharyas have gone and worshipped this memories of Krishna's Rasa-lila, and they have identified all of these places so that we can come here under the guidance of Sri Guru and Sri Gauranga, and we can touch the dust of those places and pray that the beauty of these pastimes may one day enter within our heart. So Patagram, Chandra Sarovara, these are very, very high places. The Vasanti Ras in the autumn season took place in Vrindavan. That is the Ras which is described in Srimad Bhagavatam. And we went there to the place of Vamshivat, where Krishna called all the Brajagopis to dance Ras the first time. But here in Govardhan, the Rasa-lilas are the highest of any place in Braj. Because here, only Srimati
Radhika. What is the purpose? What is the purpose? Why this place is so prominent in our sampradaya? Because
all Gopi went, passing Krishna Chaturbhuj. But he was in Chaturbhuj form. But when Sri Radhika came, Chandravali then went, all Gopis went, Lalita, Visakha, all. But when Srimati Radhika was passing, Krishna was not able to keep his Chaturbhuj form. Why? That is, Radhika is supermost of all the Gopis. It proves. This is the speciality of Vaishadra. Gaur Pramana.